तू मंदिर मंदिर क्या भटके, तेरे मात पिता ही ईश्वर है। तू जो है उनके कारण है, वे ही सच्चे परमेश्वर है। तू मंदिर मंदिर क्या भटके, रातों में गीली चादर पर वो तेरे संग में सोते थे। तू हंसता था वो हंसते थे, तू रोता था वो रोते थे। जीवन ही उनका समर्पण है, तू छाया मंदिर मंदिर क्या भटके, तेरे मात पिता ही ईश्वर है। तू जो है उनके कारण है, वे ही सच्चे परमेश्वर है। तू मंदिर मंदिर क्या भटके, जब तक है उनका हाथ तेरे सर पर तू पूर्ण सुरक्षित है। जो मात पिता को ना माने, उस पुत्र का जन्म कलंकित है। वो पशु है ना वो प्राणी है, वो सबसे बड़ा मंदिर क्या भटके, तेरे मात पिता ही ईश्वर है। तू जो है उनके कारण है, वे ही सच्चे परमेश्वर है। तू मंदिर मंदिर क्या भटके, तेरे मात पिता ही ईश्वर है। तू जो है उनके कारण है, वे ही
शांति। किसी जंगल में एक गर्भवती हिरनी अपने घर लौट रही थी, और जब लौट रही थी एक दुर्घटना घट गई। वह ऐसे स्थान पर आ गई जहां पर एक और नदी थी। नदी का पानी उफान पर था, दूसरी ओर आग जल रही थी, मानो जंगल अब पूरा जलने वाला है। और उसके सामने से अचानक एक शिकारी आ गया, और उसने पीछे देखा तो एक खूंखार शेर खड़ा है। सामने शिकारी, पीछे शेर, एक और आग और एक और जंगल की आग। क्या करती वो? भगवान को याद किया, बचने का कोई मार्ग न था। घर कैसे लौटती, बहुत मुश्किल था, और प्रसव का समय भी हो गया था। क्या वो श्रावक, क्या वो बच्चा जीवित रहता, क्या मां जीवित रहती, क्या आग में वो झुलस जाती, या नदी में बह जाती, या शिकारी का आखेड़ बनती, या तो उस शेर का भोजन। ऐसी विकट अवस्था में जब चहू और संकट है, तब उस शेरनी ने, उस हिरनी ने, उस सृष्टि के पालनहार को याद किया। कारुण पुकार, आर्त भरी पुकार, हे प्रभु रक्षा कर, कहाँ हो? आसमान में बादल थे, बारिश अब होने वाली थी ऐसा प्रतीत हो रहा था, और अचानक से एक बिजली कड़की, और बिजली के कड़कने की आवाज से शिकारी की आंखें चौंधी आ गई। उसने बाण छोड़ा, वो बाण सीधा शेर को जाकर लगा, और घायल शेर हुआ है ये जानकर शिकारी वहां से भाग गया। और फिर बारिश होने लगी, और जैसे ही बारिश हुई, जंगल की जो आग थी वो बुझ गई, और वो हिरनी बच्चे को जन्म देती है और वापस अपने घर लौट जाती है। परिस्थिति बहुत कठिन थी, मुश्किल था समय, परंतु उस हिरनी ने अपने आप को एक शून्य में प्रवेश कराया, जहां पर सब कुछ समाप्त हुआ, जैसे सारे संकल्प विलीन हो गए, कोई विचार नहीं था। संपूर्ण समर्पण, और उस समर्पण की अवस्था में ऊपर से मदद आई, और मदद ऐसी आई कि सारी परिस्थितियां अपने आप ठीक हो गई, और उसका घर जाने का रास्ता साफ हो गया। जैसे सुबह हमने सुना अब घर जाना है, उसी के विस्तार में अभी हम जाएंगे। अभी जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है रिटर्न जर्नी, अर्थात वापसी की यात्रा। वापस जाने का संकल्प महत्वपूर्ण संकल्प है, और उसके लिए पहले तो ये जानना है कि हम बहुत दूर आ गए भटक के, हम भटक गए हैं। जब ये बात पता चले उसके बाद ही जाने का संकल्प आएगा वापस, क्योंकि ये हमारा स्थान नहीं, ये हमारा घर नहीं, ये हमारे लोग नहीं, हमारा घर कहीं और है, और वहां तक हमें जाना है। तो ये जो रिटर्न जर्नी है, ये रिटर्न जर्नी का समय है, वापसी यात्रा का ये समय है। संसार की हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है, अभी हमें वापस घर जाना है, और घर जाने के लिए, इस रिटर्न जर्नी के लिए कुछ बातों की आवश्यकता है। तो ऐसी हम लगभग 12 बातें देखेंगे। बिना उन बातों के कोई भी घर वापस नहीं जा सकता। पहली, सारे कर्मों के बंधन समाप्त, अर्थात सारे कार्मिक अकाउंट्स यहीं पर चुकतु करने हैं, हिसाब चुकतु, किताब बंद, हिसाब चुकतु और किताब बंद। जब तक सारे हिसाब किताब चुकतु नहीं हो जाते, वापस कोई भी जा नहीं सकता। हमने बहुत सारे कर्म बंधन निर्माण किए हैं, बहुत आत्माओं से लेन देन की है, बहुत आत्माओं से बहुत कुछ जोड़ा है, तोड़ा है, वो सारे हिसाब किताब जब तक हम चुकतू नहीं करते तब तक यहां से कोई जा नहीं सकता। और जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है वो हमारा ही किया वापस लौट रहा है। कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं रहा है, जो हो रहा है अकाउंट्स क्लियर हो रहे हैं। मेडिकल के इतिहास में एक घटना का वर्णन है, 1993 शायद अमेरिका में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें फॉरेंसिक मेडिसिन के जो चेयरमैन थे उन्होंने एक घटना का वर्णन किया था। एक 6 मंजिला इमारत है जिसमें से 6 या 10 मंजिला, 6वीं मंजिल से एक युवक ने कूदकर खुदकुशी कर ली, आत्महत्या, सुसाइड। पर बाद में पता चला कि उसकी मृत्यु ऊपर से गिरने से नहीं हुई है, वो जब गिर रहा था तब बीच में किसी ने गोली चलाई है और वो गोली उसके माथे में गई और उससे उसकी मृत्यु हुई है। तो पहले सुसाइड का केस था, फिर पता चला ये सुसाइड नहीं है, ये होमिसाइड है। होमिसाइड अर्थात किसी और का मारना, किसी और ने इसको मारा है, इसने खुदकुशी नहीं की है। फिर और तहकीकात आगे बढ़ी और पता चला ये जो गोली चली है, इसने तो 6वीं मंजिल से कूदा है, ये जो गोली चली है शायद, क्योंकि ये खुदकुशी नहीं हो सकती क्योंकि ऑलरेडी नीचे जाली थी, किसी कारण से नीचे जाली बिछी हुई थी, वो जाली के ऊपर गिरा और इसकी मृत्यु गोली के चलने से हुई है। और पता चला कि गोली जो चली वो 5वीं मंजिल से चली है। फिर ये केस बन गया होमिसाइड का, मर्डर का। 5वीं मंजिल पर गए, वहां पर एक बूढ़े व्यक्ति दाम्पत्य रहता था, पति और पत्नी। पहले उन्होंने मना किया, बाद में कहा हाँ, उस पति ने कहा गोली मैंने ही चलाई थी और मैंने गोली अपनी पत्नी को मारने के लिए चलाई थी। पर वो गोली गलती से खिड़की से निकलकर वो जो ऊपर से कूद रहा था उसको लग गई। पर उसने कहा जो गोली मैंने चलाई थी, मैं तो अपनी पत्नी को धमकाने के लिए हमेशा ऐसा करता हूं। पत्नी ने भी कहा कि ये मुझे कभी नहीं मार सकते और इन्होंने गोली भले चलाई थी, ये खाली दिखाते थे हमेशा, और चलाई भी तो मुझे मारने के लिए नहीं चलाई थी। और दूसरी बात महत्वपूर्ण, हमारी पिस्तौल हमेशा खाली रहती थी। पिस्तौल तो घर पे थी लाइसेंस वाली, पर जब भी मैं डराता था इसको, पर बंदूक, ये गोली हमेशा खाली रहती थी। इसमें गोली किसने भर दी? अब ये दूसरा प्रश्न आ गया अभी नया। फिर पता चला उनका एक बेटा था जो कि ड्रग एडिक्ट था, बहुत सारी नशीले पदार्थ खाता था, पैसे मांगता था माताजी से, वो माता, उसकी मम्मी उसको पैसे नहीं देती थी। और फिर पता चला वो जो बेटा था उसी ने उस बंदूक में गोलियां भरी थी ताकि पिताजी को कभी गुस्सा आ गया और माताजी को मारने की कोशिश की तो उसमें गोलियां हो और मां मर जाए, क्योंकि उसने पैसे दिए नहीं जो मार रहा था, जो मांग रहा था। और बाद में अल्टीमेट ट्विस्ट स्टोरी का, वो बेटा वही था जो ऊपर से गिरा था, उसी ने गोलियां भरी थी, वो उसी की मां थी और वो उसी का बाप था। केस क्लोज हो गया जो हम करते हैं वही वापस लौट कर आता है। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो सब हमारा ही किया धरा है। साकार मुरलिया माता है, बाप से कहती है बाबा हमारा पति हमको बहुत मारता है, बाप कहते हैं तुमने भी मारा होगा, तुमने भी मारा होगा। तो जब सारे हिसाब किताब ही है और हमें चुपतू करके वापस घर जाना है, तो फिर अभी नए हिसाब बनाने नहीं है। किसी के पुरुषार्थ में कोई एक आत्मा है जो बहुत विघ्न डालती है, क्या करे, लड़ाई करे उससे? नहीं, वो हिसाब है किसी जन्म का, चुपतू हो रहा है, अब सहन करो उसको, चुप रहकर चुपतू हो जाएगा वो। अगर नए हिसाब बनाए, फिर से बदला रखिया, वो जो उसने हमारे साथ ऐसा किया, हम भी उसके साथ ऐसा करें, तो हिसाब खत्म नहीं होंगे, नए हिसाब बनेंगे। पूर्व जन्म के कितने हिसाब है, वो सारे चुकतू करने। महाभारत में दिखाए मनगढ़ंत कहानियां हैं कि क्यों भीष्म को शेष शैया पर लिटाया गया, अर्जुन ने ऐसा क्या कर दिया था, उसने अर्जुन के साथ ऐसा क्या कर दिया था, कहानियों में दिखाते हैं कि वो एक सांप था और वो एक शिकारी था, और भीष्म शिकारी था और उस सांप को मार दिया और उसको छन्नी कर दिया था, वगैरह वगैरह। उसी के हिसाब के कारण उसने इसको इस जन्म में छन्नी छन्नी कर दिया। चाहे शास्त्रों की बातें सही हो या गलत, पर एक बात तो सत्य है कि उसमें भी दिखाया है कि जो कुछ हो रहा है वो कर्म के हिसाब से हो रहा है। कर्म सिद्धांत है, कर्म प्रधान है, कर्मों का ही हिसाब है। हमने जिसके साथ जो जो किया, लौट कर हमारे साथ वही होगा। नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड, स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा है। जो घूसा तुमको लग रहा है, तुम उसके योग्य थे, वो तुमको मिलना ही चाहिए था। नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड, यू डिजर्व्ड इट, क्योंकि तुमने भी किसी को मारा होगा। राजा के सिपाही आते, एक साधु को पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं, कारागार में, एक हफ्ते के बाद छोड़ते हैं। आरोप था कि तुमने चोरी की है राज्य से, वो कहते हैं अच्छा ठीक है। 7 दिन कारागार में, 7 दिन के बाद जो चोर असली था वो पकड़ा गया, साधु को कहा तुम मुक्त हो, उसने कहा अच्छा, चुपचाप जाने लगा। राजा ने कहा रुको, तुमने कुछ बोला नहीं, अपनी सफाई नहीं दी, जब तुमको कारागार में डाल रहे थे तुम चुपचाप चले गए, और अब छोड़ रहे हो तो अब भी चुपचाप जा रहे हो, कैसे हो तुम मनुष्य? वो कहता है महाराज, चोरी तो क्या, मैंने इस जीवन में कोई भी पाप नहीं किया, और फिर भी मुझ पर चोरी का आरोप लगता है और मैं कारागृह में जाता हूं, अर्थात ये मेरे किसी और जन्म का पाप था, तो मैं क्यों विरोध करूं किसी और जन्म का? किसी को बीमारी होगी, किसी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, पर हिसाब चुकतू होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। खान पान बहुत अच्छा है, पर ऐसा कुछ हो जाएगा कि शरीर अस्वस्थ है किसी और कारण से, या फिर संबंधों में इतनी कड़वाहट है, इतने झगड़े हैं, वो भी एक हिसाब, या फिर प्रकृति के आधार की वजह से कुछ हिसाब, या सरकार की वजह से, या कोई पुराने संस्कार की वजह से हिसाब चुकतू होने हैं। तो रिटर्न जर्नी में सबसे पहली बात है सारे अकाउंट क्लियर करना है, और उसकी विधि है साक्षी भाव, और उसकी विधि है नो रिएक्शन। अब चुप रह के देखना है उसको, हिसाब आया है अब चला जाएगा। हम ट्रेन में बैठे, हमने किसी से कुछ नहीं कहा, एक दूसरा व्यक्ति आता है, गालियां देने चालू करता है, गालियां देकर चला जाता है, क्यों दी? हिसाब। माँ बाप गरीब है, छोटा सा बच्चा जन्म लिया, जन्म के दूसरे दिन पता चलता है दिल में छेद है, हार्ट, डॉक्टर ने कहा 5 लाख लगेंगे ऑपरेशन के। माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं, लोन लेते, कर्जा लेते, दिन रात काम करते हैं, नौकरी करते, मजदूरी करते हैं, यहां वहां भाग दौड़ करते, 5 लाख रुपए जमा करते हैं, गरीब परिवार है, ऑपरेशन हुआ बच्चे का, ऑपरेशन के 3 दिन के बाद बच्चा मर गया। क्यों आया था वो? पैसे लिए थे ना उससे, वापस लेने आया था वो, और आकर लेकर चला गया। तो जो भी बच्चा आता है कितना अच्छा दिखता है पालने में, पर उसके हाथ में एक तलवार भी होती है, वो देख लेना। तलवार लेकर आता है वो किस लिए? हिसाब चुक तो करने। ऐसे ही नहीं आता है तुम्हारे घर में तो अकाउंट्स क्लियर करने हैं तो ही जा पाएंगे, नहीं तो फंसे रहेंगे यहां, और फिर दुख होगा, दर्द होगा बहुत। दूसरा, सारे बंधन समाप्त। जब तक बंधन है आत्मा ऊपर नहीं जा सकती, सारे बॉन्डेजेस जब तक है आत्मा नहीं जा सकती। आत्मा मन से निर्बंधन हो जाए, बंधन मुक्त, सुबह की मुरली, कर्मातीत अर्थात बंधन मुक्त। सूक्ष्म भी बंधन नहीं, स्थूल तो तोड़ दिए, छोड़ दिए, पर जो सूक्ष्म है वो गहनों की तरह है। अगर लोहे की चेन से हमको बांधा जाए और कोई कहे कि हम तुमको मुक्त करते, कितनी खुशी होगी। पर सोचो, सोने की चेन है, उसमें रत्न जड़े हुए हैं, हीरे जड़े हुए हैं, बहुत पतली पतली है, तो हम कहेंगे रहने दो ना, दिखने में तो भी ठीक लगती है, अच्छी लगती है, उसको कौन निकालेगा? सोने की तो उखाड़ के फेंक दी। लोक लाज की बिल्कुल परवाह नहीं, ज्ञान में आ गए और ऐसा नशा चढ़ गया, कोई मतलब नहीं किसी से, सबसे पंगा ले लिया ज्ञान में आते ही, समाज परिवार बहुत पावर आ गई। परंतु जो सूक्ष्म रस्सिया है, सूक्ष्म मोह है, सूक्ष्म आकर्षण है, वो उन गहनों की तरह है जिसमें रत्न है, हीरे जड़े हुए हैं। रोज देखते हैं गले के हार को, मुरलियों में आता है फेंक दो, हाथ जाता है फिर देखते हैं बहुत अच्छी है, कैसे फेंके। एक शराबी था, इतनी शराब पीता था, इतनी शराब पीता था, रोज शराब, रोज पत्नी से झगड़ा। एक दिन इतना ज्यादा झगड़ा हो गया, पत्नी ने कहा मैं घर छोड़ के चली जाती हूं। उसे एकदम से धक्का लगा, गया अपने कमरे में, बहुत सारी शराब की बोतल रखी थी, एक बोतल ली और उसको उठाया और उस बोतल से कहा तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी के साथ रोज झगड़ा होता है, और फोड़ दिया। दूसरी बोतल उठाई, बोतल को देखकर कहा कि तुम्हारी वजह से रोज मेरे बच्चे मुझसे नाराज रहते, फोड़ दिया। तीसरी बोतल ली, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई, कोई नौकरी पर नहीं रखता, फोड़ दी। चौथी बोतल ली और फोड़ने ही वाला था कि देखा भरी हुई है, कहा कि तुम निर्दोष हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम रह जाओ। इसके पहले वाली थी वो कैसी थी? खाली थी, पर तुम निर्दोष हो। एक एक बंधन लिया, फोड़ा फोड़ा फोड़ा, पर एक एकदम अंदर वाला उसको उठाया। अब फोड़ने ही वाले थे कि नहीं, तुम निर्दोष हो, तुम रह जाओ। सारे बंधन समाप्त। जितनी बंधनों की रस्सियां होगी बांध के रखेगी, जितना जोर से पकड़ा है, किसी रस्सी को जोर से पकड़ो, देखो यहां क्या होता है, लाल लाल हो जाता है हाथ। मुरलियों में आया है छोड़ो तो छूटे, खींच रहे पकड़े के, दुखी हो रहे पर छोड़ नहीं रहे, जैसे वो घोड़ा पत्तियां खाता है कांटों वाले झाड़ की, वो कांटे चुभ रहे हैं, दर्द होता है, पर पत्तियां खाना नहीं छोड़ता है। कैसा फंसा है आत्मा, धीरे धीरे निर्बंधन होती जाए। इस संसार के जो भी संबंध है उसमें दोष देखने हैं, दोष दृष्टि, कि यहां के सभी संबंध विनाशी है, स्वार्थी है, जो भी एक दूसरे से प्यार करते किस आधार पर करते, स्वार्थ। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। सारे संबंध कैसे हैं? स्वार्थी है, दुखदाई है, दुख देते हैं। संसार के सारे संबंध धोखा देते हैं, दोष दृष्टि उत्पन्न करनी है। कल की साकार मुरली थी, तुम छीछी से वाह वाह बनने आए हो। छीछी संबंध है यहां के सारे, दुखदाई संबंध है, धोखा देते हैं, ठगों की यह दुनिया है। रावण सबसे बड़ा ठग है, माया सबसे बड़ी ठगनी। माया महाठगनी हम जानी, कबीर ने कहा यह बहुत ठगनी है, ठगती है। ये सारे संबंध ठगने वाले हैं, आत्मा की सुख चैन शांति सब छीन लेते हैं। और जिसको हम प्यार कहते हैं, प्यार प्यार प्यार, वो प्यार तो है ही नहीं, कभी था ही नहीं, वो तो शरीर है बीच में, जब तक तब तक प्यार कहां से। लव हैज नथिंग टू डू विद बॉडी, लव का तो बॉडी से संबंध ही नहीं है। जो पति कहता है कि मेरा तुमसे बहुत प्यार है, काहे का प्यार? कुरूप हो जाए तो प्यार ही खत्म हो जाएगा, फिर कैसा प्यार। तो संसार के जितने संबंध हैं, जितने रिलेशंस हैं, उसके वास्तविक रूप को देखना है। जिसे हमने बहुत सजा के रखा है, मेरा बहुत प्यार है उसका, मेरे से बहुत प्यार है, बहुत प्यार बहुत प्यार, वो प्यार है ही नहीं, कभी था ही नहीं, वास्तव में वो स्वार्थ था या वासना थी। प्रेम तो बहुत ऊंची भावना है, प्रेम तो परमात्मा का स्वरूप है। मनुष्य जो करते वो उसे प्रेम नहीं है, वो तो स्वार्थ है, वो देही कामनाएं हैं। इसके लिए जितने रिश्ते संबंधी संसार सब में क्या दोष है वो देखना है, तो ही उनसे दूर हो सकेंगे। दूर अर्थात मानसिक रीति से दूर, इमोशनल डिटैचमेंट, नहीं तो उनमें फंसे रहेंगे। आज की मुरली में तो है कि एक कुछ मिनटों के लिए भी किससे प्रभावित हुए, तो उन मिनटों में बाप की याद थी नहीं थी? प्रभावित हुए अर्थात झुकाव का सहारा लिया। मुरली सुनी ना सबने, बहुत पावरफुल मुरली है सुबह की। जरा सा भी झुकाव, जरा सा भी लगाव, थोड़ा सा है, पर वो अंश वंश को जन्म दे देगा। इसके लिए अपने आप को बंधनों से धीरे धीरे मुक्त करते जाना है। किसी ने अपने बिजनेस का इतना विस्तार कर लिया, इतना विस्तार करके रखा है, और फिर कहते हैं हम बाबा के लिए कर रहे, बाबा को नहीं चाहिए ऐसा पैसा। जिस पैसे कमाते समय बाबा की याद ही नहीं है, वो अपवित्र धन है। सुबह से लेकर लगे हुए ना अमृत वेला हो रहा है, ना ब्रह्मा भोजन का महत्व है, ना शाम का योग हो रहा है, पैसे के पीछे पागल है। 11-11 बजे तक रात की नौकरी कर रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, और फिर पैसा आ रहा है बाबा के यज्ञ में दे रहे हैं थोड़ा बहुत। वो पैसा तो बाप की याद में कमाया ही नहीं था। अगर ऐसा होता तो भगवान कब का टच कर दिया होता किसी बहुत बड़े करोड़पति को कि आ जाओ सारा पैसा दे जाओ। पर भगवान के महावाक्य है, परमात्मा तालाब गरीबों के पाई पाई से भरेगा। यहां सच्चाई की कमाई चाहिए, याद में कमाया हुआ धन यज्ञ में लगेगा, बाकी नहीं। तो दूसरा है सारे कर्मबंध, सारे बंधनों से मुक्ति। अब नए बंधन तैयार नहीं करना है। तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बहन हो, तुम मुझे बहन जैसी लगती हो, तुम मुझे भाई जैसे लगते हो, तुमको देखता हो तो माँ की याद आती है। नई माँ तैयार कर रखी है, नया पिता तैयार कर रखा है, नए चाचा जी तैयार कर रखे हैं, नया बेटा तैयार कर रखा है, ये कुमार तो मेरे बेटे जैसा लगता है। विशेष भाई, विशेष बहन, विशेष राखी, विशेष टोली। इस परिवार में केवल एक ही संबंध है, भाई भाई या भाई बहन, बस। नए संबंध तैयार करना, नए संबंधियों को ढूंढना, यहां तो मुक्त होना है स्वयं को सभी बंधनों से, नया नया क्रिएट नहीं करना है, जो है वो ठीक है उसी से मुक्त होना है। दूसरा, तीसरा, रिटर्न जर्नी के लिए चाहिए वैराग्य, इस संसार से वैराग्य। मीरा थी राजस्थान में, जिस राजस्थान में कभी स्त्रियों ने घूंघट नहीं उठाया, सड़कों पर घूमने लगी, फिरने लगी, गाने लगी, ऐसी मगन हो गई, और वहां के लोगों ने उसे नहीं समझ पाए। उसकी स्थिति आध्यात्मिक रीति से इतनी ऊंची थी, ऐसी वैराग की स्थिति थी, भोजन भवन भलो नहीं लागे, कुछ अच्छा नहीं लगता है। उसे पढ़ने के लिए समझने के लिए तो कोई तपस्वी ही समझ सकता था, संसार के रहने वाले लोग क्या समझेंगे। वो योगिनी थी, तपस्विनी थी, ब्रह्मचारिणी थी, एक में ही मन था, बस उसमें ही संसार था, वही सब कुछ था। यह संसार और यह संसार की बातें और संसार की कोई चीज उसको आकर्षित नहीं करती थी, सब कुछ गौण था, न वस्त्र न वो आभूषण, किसी में उसका आकर्षण नहीं था। कितनी मन की अनासक्त स्थिति थी। जब तक ऐसा वैराग्य नहीं, तब तक इस संसार से जा नहीं सकेंगे। वही याद आते रहेगा, वही व्यक्ति याद आते रहेगा, जो कुछ हमने जीवन भर किया अंत में वही याद आता है। ऐसा नहीं है कि अंत में बाबा को याद कर लेंगे मरते समय, ऐसा नहीं होता है। जो जिसने जीवन भर किया है वही याद आता है। जैसे दिखा है एक मारवाड़ी व्यक्ति मर रहा है, बहुत ज्यादा कंजूस था, सारा परिवार आसपास है, पत्नी है, चार बेटे हैं, और वो कह रहा है ब ज ब ज, उनको समझ में नहीं आ रहा ये क्या कह रहा है, झ ब ब झ ऐसे कह रहा है। एक बेटा कहता है ये शायद कहने की कोशिश कर रहे हैं झाड़ के नीचे बक्सा है, ढूंढो पूछो इनसे कौन सा झाड़, क्योंकि इतने सारे झाड़ है घर के बाहर, कौन से झाड़ के नीचे कौन सा संदूक कौन सा बक्सा है पूछो। डॉक्टर कहता है एक बहुत महंगा इंजेक्शन है, अगर मैं लगा दू तो एक मिनट के लिए पांच एक दो मिनट ये और जिंदा रह सकते हैं। वो कहते लगाओ, पर वो कहते इसका असर बस पांच ही मिनट चलेगा। बेटे कहते चलेगा, ये पूरा तो हो जाएगा, क्या कह रहे समझ में तो आ जाएगा, क्योंकि खाली इतना ही बोल रहे, अब मरने का समय, लास्ट समय, बस मरने ही वाले है। ज ब ब झ क्या कह रहे हैं ये। डॉक्टर कहता है महंगा बहुत है, वो कहता चलेगा लगाओ, इंजेक्शन लगा देता है। पिताजी को थोड़े प्राण आते है, कहते हैं वो बच्चा झाड़ू चबा रहा है, बकरी का बच्चा, तुम लोग क्या कर रहे हो यहां, जाओ, और शरीर छोड़ देता है। बच्चा झाड़ू चबा रहा है, झाड़ू खराब कर रहा है, बकरी का बच्चा। जो दिन भर जीवन भर सोचा था बिजनेस बिजनेस बिजनेस, लास्ट में भी वो याद आएगा, फिर बाबा नहीं याद आएगा। तो तीसरी बात जो चाहिए वो क्या है, वैराग्य। इस संसार की वस्तुओं को देखते रहना है और सोचना है इनमें ऐसा क्या आकर्षण है, क्या वास्तव में ये सुख दे सकती है। आत्मा की खोज सुख की है, आनंद की है, वो तो अंदर मेरा स्वभाव है। फिर ये वस्तु मेरे पास जो नहीं है वो आ जाए तो कैसे मुझे सुख दे सकती है, हो नहीं सकता। वो सुकरात था, सोक्रेटिस, हर दिन मार्केट जाता था, वैरागी था, तपस्वी था, एक रीति से इंटरेस्ट नहीं था संसार में, पर रोज मार्केट में पूरा चक्कर लगा के आता था, एक एक चीज को देखता था, अच्छा चप्पल जोड़े, अच्छा कपड़े। लोग पूछते थे तुम ठहरे सन्यासी, तुमको क्या पड़ी है, क्यों जाते हो रोज मार्केट में चीजों को देखने, तुम तो कहते हो कि ये सब व्यर्थ है, और खुद तो खुद रोज घूम के आते हो। वो कहता है मैं ये देखने जाता हूं कि हर वस्तु को देखकर ये सोचता हूं ये मेरे पास नहीं है फिर भी मैं कितना सुखी हूं। जब भी कोई वस्तु को देखता हूं तो क्या सोचता हूं, ये जूते जो दिख रहे हो शोकेस में वो मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं सुखी हूं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट, ये कोट जो दिख रहा है बिना इसके मैं सुखी हूं, मैं ये देखने जाता हूं कि संसार में कितनी वस्तुएं हैं जिनके बिना भी सुखी रहा जा सकता है। तो तीसरा वैराग, संसार के प्रति दोष दृष्टि, संसार के सुख क्षणभंगुर, संसार की प्राप्तियां क्षणिक, और जो मिलता है वो मिलने के बाद तुरंत एक कुंठा, एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। अब वो नहीं, अब कुछ और चाहिए, फिर नया चाहिए, फिर और नया चाहिए, फिर और नया चाहिए। कभी भी तृप्ति नहीं है इस संसार की वस्तुओं में। सब कुछ पाने के बाद भी मन खाली खाली प्यासा रहता है, ऐसा ये संसार का स्वभाव है। व्यक्ति सोचता है ये सुख मुझे मिल जाए, वो सुख मिलता है, मिलते ही व्यर्थ हो जाता है, फिर दूसरा चाहिए, भर नहीं पाता आत्मा को। और हमेशा जैसे हम कहते हैं आत्मा अनंत है, अनंत की प्यास केवल अनंत ही बुझाएगा। आत्मा कैसी है? अनंत है। इस अनंत की प्यास या आदि अंत वाली वस्तुएं नहीं बुझा सकती। कोई सोचता है मुझे बहुत सम्मान मिल जाए, बहुत प्रसिद्धि मिल जाए, मान सम्मान हो जाए, धन मिल जाए, फिर मैं खुश होऊंगा, और जब मिल जाता है सब व्यर्थ हो जाता है, फिर कुछ और चाहिए। ऐसा अतृप्ति संसार का स्वभाव है। चौथी बात, रिटर्न जर्नी के लिए एक अभ्यास चाहिए, एक सेकंड में अशरीरी होने का। कौन सा अभ्यास चाहिए? एक सेकंड में अशरीरी, अब ये भी है, और एक सेकंड में शरीर से आत्मा निकल जाए, अशरीरी हो जाए पूरी की पूरी। ऐसा अभ्यास करते रहना है, समय मिले अभ्यास करना है कि मैं आत्मा इस तन से निकल कर गई ऊपर, परमधाम में शिव बाबा को टच किया और वापस आ गई। मैं आत्मा एक सेकंड में यहां से निकल कर सतयुग में पहुंच गई। सतयुग की सात बातें हैं देवताओं की। कौन कौन सी? देवताओं की महिमा सबको पता है, सर्व गुण संपन्न, एक, 16 कलाओं से संपन्न, दो, मर्यादा पुरुषोत्तम, तीन, संपूर्ण निर्विकारी, चार, डबल अहिंसक, पांच, छठवा सतो प्रधान, सातवा आत्माभिमानी। देवता अर्थात आत्माभिमानी, परमात्मा अभिमानी नहीं है देवता, वो हम है। देवताओं को परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं है। एक सेकंड में परमधाम में पहुंच जाना, एक सेकंड में सूक्ष्म वतन में पहुंच जाना, बाबा से वरदान लेकर आ जाना। सूक्ष्म वतन में गए, भगवान ने हाथ रख दिया और मैं आत्मा नीचे आ गई, चार्ज्ड। कल परसों मुरली थी ना, बैटरी तुम्हारी क्या हो गई है? डिस्चार्ज। मेरी बैटरी फुल चार्ज हो गई। और मोबाइल की बैटरी जब चार्ज होगी तो क्या फीलिंग रहती है अंदर, कैसा लगता है? एक है मोबाइल की बैटरी अभी 10% पे है तो क्या होता है, क्या होता है फीलिंग्स, क्या क्या है? बेचैनी, और क्या है? डर। और अभी ऑफ हो जाएगी थोड़ी देर में, और हड़बड़ी, और ज्यादा यूज नहीं करते, फिर रखो, कम से कम यूज करो। और जब बैटरी, और डिम कर दो उसका स्क्रीन, और जब बैटरी फुल होती है 100%, तब क्या क्या करते हैं? निश्चिंत है, निश्चिंत स्थिति है, और बहुत सारे एप्लीकेशन एक साथ यूज कर सकते हैं। तो बैटरी फुल, बैटरी डिस्चार्ज। सारे दिन भर क्या होते रहता है? बैटरी का डिस्चार्ज होती रहती है। डिस्चार्ज तो वहीं से होनी चालू हो जाती जिस समय प्लग से निकाला। देवताओं का पतन कब से चालू हुआ? सोच के उत्तर देना। बस उसी दिन से, उसी सेकंड से, फर्स्ट सेकंड से ही गिरना चालू हो गए। परंतु आत्मा की पावर इतनी है कि विकारों की प्रवेशता नहीं होती है त्रेता अंत तक। विकारों की प्रवेशता बाद में चालू होती है। वगर पर देहभान रावण है तो रावण की प्रवेशता सीधा सतयुग के पहले दिन से ही है फिर, क्योंकि उसी समय से डिस्चार्ज होना चालू हो गया है। पर आत्मा में पावर बहुत ज्यादा है इसलिए विकार नहीं होते। पर फर्स्ट जन्म सेकंड जन्म में अंतर तो है, थर्ड जन्म और कृष्ण उसमें तो अंतर है, तो कम कम होनी लगती है। तो सारे दिन भर बैटरी को चार्ज करने की विधि क्या है, एक सेकंड में अशरीरी हो जाना, एक सेकंड में स्वमान का अभ्यास, मैं आत्मा मुझसे किरणें फैल रही है, जैसे किचन में है भोजन बना रहे, अचानक अशरीरी मुझसे पवित्रता की किरणें इस भोजन में जा रही है, मुझसे पवित्रता की किरणें इस भोजन में जा रही है। अभी अभी मधुबन में परसों या दो तीन दिन पहले हम लोगों का जो मॉर्निंग ग्रुप है उसमें एक भाई को बहुत अच्छी चर्चा हुई थी, भोजन रसोई बनाने वाला जो है उसको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, रसोई के शिष्टाचार। वो क्लास बहुत अच्छा क्लास है, आप लोग सब सुन सकते हैं। माताओं को विशेष भोजन बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, बहुत सारी चीजें, लगभग 50 बातें बताई होगी उसमें, छोटी से छोटी बात, रसोई के क्या मैनर्स है, किचन के क्या मैनर्स है, रसोई के क्या शिष्टाचार है। तो एक सेकंड में अशरीरी, तो पहला बताया सारे अकाउंट क्लियर करने हैं, सारे बंधनों से मुक्त होना है, दूसरा, तीसरा वैराग, चौथा एक सेकंड में अशरीरी, पांचवा एवर रेडी। रिटर्न जर्नी के लिए कौन सी चीज की आवश्यकता है, एवर रेडी, मैं तैयार हूं। वो गीत है ना, चलो दिलदार चले, उत्तर क्या है, हम है तैयार, चलो हम तैयार हैं, अभी के अभी तैयार है, ना किसी को फोन करना है, ना किसी से बात करनी है, ना किसी से कोई वार्तालाप करनी है, किसी को कुछ बताना है, कुछ नहीं, अपने आप को ऐसे तैयार रखना है कि मैं बस रेडी हूं। कुछ ब्रह्मा कुमारी बहनें और कभी हमको बता रही थी कि ऐसा अभ्यास है विदेशों में कि वहां कभी भी कुछ भी होता है हलचल, ऐसी कुछ हलचल की देश है, के देश है। वो बहनें एक बार हमको बता रही थी या कहीं शेयर कर रही थी कि रात के समय में भी कुछ भी गड़बड़ हो जाती है। हम लोग फुल ड्रेस में ही सोते हैं, जो ये ड्रेस है ब्रह्मा कुमारी का, वैसे ही इतनी हलचल का देश है, क्योंकि हर घड़ी अंतिम घड़ी होती हो सकती है, इसलिए एवरेडी हमेशा अपने आप को तैयार रखना है। वो सारे पल जिसमें हम थोड़ा फुर्सत में है और थोड़ा लगता है रिलैक्स कर ले, शायद वही अंतिम घड़ी हो जाए तो उस समय एवर रेडी है नहीं है। अनगार्डेड मूवमेंट्स इंग्लिश में कहते हैं, वो पल जिसमें हम सतर्क नहीं है बस वही माया आक्रमण कर लेती है। 24 घंटे में 23 घंटे 50 मिनट एकदम अलर्ट थे और 10 मिनट अपने आप को छोड़ दिया, बस उसी 10 मिनट में माया आ जाएगी। माया जो है उसको हमारी हर कमजोरी का पता है, उसकी परखने की शक्ति बहुत तीव्र है, हमारी बहुत कमजोर है, हम नहीं परख पाते उसको। आज की मुरली में ना सीता सोना क्या बन गया उसका, खोना, सोना जो था वो क्या हो गया, खोना बन गया उसके लिए, वो हिरन खो दिया उसने, परख नहीं पाई। तो माया को परख लेना, और ब्राह्मण परिवार में माया तो सफेद ड्रेस पहन के घूमती है और बैज भी लगाया है उसको, तो ये तो समझ में नहीं आता है कि यही माया है। दुनिया वालों के लिए तो हम कह सकते हैं माया हटाओ, पर इस परिवार में भी माया घूम रही है, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, जो पता नहीं चलता कि ये माया है। तो एवर रेडी। अगला, एक बाप की याद और घर की याद, घर जाने के लिए दो चीजें चाहिए, रिटर्न जर्नी के लिए एक उसकी याद चाहिए और एक घर की याद। बार बार घर को याद करते रहना है, बार बार उसको याद करते रहना है कि बाबा आया है किस लिए, ले जाने के लिए। मुरलियों में आता है कि तुमने ही तो पुकारा था ना द्वापर से, आ जाओ अब मैं आया हूं, पर क्या तुमको खबर थी तुमने किसको पुकारा, महाकाल बनकर आया हूं मैं, अब चलो अर्थात मरो। मुरलियों में महावाक क्या है, तुम सबके शरीरों को जलाकर तुम्हारी आत्माओं को ले जाने में आया हूं। कितना प्यारा वाक्य है ना, अच्छा है, अच्छा है, तुम्हारे शरीरों को जलाकर तुम्हारी आत्माओं को ले जाने आया हूं। तुमने ही पुकारा था ना, अब चलो, बहुत पुकारा था आओ आओ आओ, पर पता था क्या किसको पुकार रहे हो? शिव को महाकाल कहा जाता है, काल को पुकारा है, तुमने अपने काल को, काल का आह्वान किया है, अर्थात साक्षात मृत्यु का आह्वान किया है, अब मरो और चलो मेरे साथ। याद, उसके बाद में अगली पॉइंट, चार पॉइंट्स है जो जुड़ी हुई है। एक पंख, रिटर्न जर्नी के लिए क्या चाहिए, पंख, बिना पंख नहीं जा सकेंगे। दूसरी पॉइंट, डबल रिफाइंड पेट्रोल, बाबा ने कहा डबल रिफाइंड पेट्रोल चाहिए। तीसरी बात इसी से जुड़ी हुई, डबल लाइट स्थिति, और चौथी बात स्विच। ये चार अलग अलग पॉइंट्स है, चारों एक साथ जुड़ी हुई है। रिटर्न जर्नी के लिए चारों बातें चाहिए। स्मृति का स्विच ऑन हो, जैसे कोई प्लेन है तो उड़ाने के लिए क्या करते हैं, स्विच दबाते हैं, तो यहां पर स्मृति का स्विच ऑन हो, स्मृति अर्थात याद आ जाए कि मुझे अब वापस जाना है, ये स्मृति का स्विच। डबल रिफाइंड स्थिति, डबल लाइट स्थिति, हल्के चाहिए, जो भारी है उड़ सकेंगे नहीं, उड़ने के लिए क्या चाहिए, बहुत हल्कापन चाहिए। किसी की कोई बात हमने पकड़ के रखी है, 10 साल पहले उसने कही थी, अब तक भूले नहीं है, उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मेरा अपमान किया था, तो हल्का है या भारी, भारी। उसने मेरे साथ ये किया, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, हम भी देख लेंगे, भारी। इसके लिए माफ कर देना है आत्माओं को, और नया पूरा वर्ष बीत रहा है, पुरानी सारी शत्रुता खत्म करनी है। यहां की अब बातें नए साल में लेके नहीं जानी है। डबल रिफाइंड पेट्रोल, इस पर एक मुरली चली थी कभी, बाबा ने कहा डबल रिफाइंड पेट्रोल अर्थात एक साकारी अवस्था, एक निराकारी अवस्था। साकारी में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले और निराकारी में शिव बाबा को फॉलो करने वाले, ये है साकारी और निराकारी स्थिति की डबल लाइट, डबल रिफाइंड पेट्रोल, ये डालते रहो इसमें। और पंख, पेट्रोल, डबल लाइट स्थिति और स्मृति का स्विच, ये चार बातें हैं। जाने के लिए ये चार चीजें चाहिए, उड़ने के लिए चार, उड़ान के लिए चार चीजें बहुत आवश्यकता है। उसके बाद में अगली पॉइंट, वापस घर लौटने के लिए चाहिए संपूर्ण पवित्रता। अपवित्र आत्माएं घर नहीं जाएगी, बाबा ने कहा है अगर पवित्र बनने के दो विधियां है, एक तो पुरुषार्थ तपस्या और दूसरा धर्मराज के दंडे। आत्मा दो रीति से पावन बनेगी, इसके लिए संपूर्ण पवित्रता या संपूर्ण ब्रह्मचर्य की धारणा चाहिए, कंप्लीट ब्रह्मचर्य, जरा भी पवित्रता खंडित ना हो। आत्मा भी पवित्र, ये शरीर भी पवित्र, किसी की हिम्मत नहीं इस शरीर को स्पर्श करे, टच, अपने आप को इतना पवित्र रखना है। बाबा ने कहा पवित्रता के लिए अगर बर्तन भी साफ करना पड़े तो बर्तन साफ करने की नौकरी करो, पर किसी के सामने झुकना नहीं, बच्चे बाप से पूछते, बाबा माँ बाप कहते हैं शादी करो हम क्या करें। कुमार कुमारिया बाप से पूछते साकार महावाक्य की मुरलियों में आता है। बाप कहते हैं बच्चे, बाप की याद में अगर सर बिकट जाए तो उच्च पद पाओगे, पर विकार में कभी नहीं जाना, नरक है वो, पॉइजन है पॉइजन। ये सबसे बड़ी श्रीमत है भगवान की, संपूर्ण ब्रह्मचर्य संपूर्ण पवित्रता। काम कटारी काट देगी, जला देगी, भस्म कर देगी, पांचवी मंजिल से नीचे गिरते हैं तो फिर से नए वर्ष में पवित्रता की प्रतिज्ञा, पवित्रता का प्रण पक्का करना है। महाराणा प्रताप थे राजस्थान में, प्रण लिया था। किसको याद है वो प्रण क्या था? चार बातें थी उस प्रण में, उस प्रतिज्ञा में। जब तक चित्तौड़ को आजाद नहीं करूंगा तब तक क्या क्या करूंगा? जमीन पर सोऊंगा, किसी भी बिछोने पर आज से नहीं छूंगा, किसी भी गद्दे पर नहीं सोऊंगा, किसी भी राजसी इस पर नहीं सोऊंगा। यह पहली प्रतिज्ञा थी, जमीन पर सोऊंगा घास पर। दूसरी प्रतिज्ञा अन्न की, आज से जो भी खाऊंगा पत्तों के ऊपर खाऊंगा, किसी भी थाली सोने और चांदी की थाली में नहीं खाऊंगा। तीसरी प्रतिज्ञा महलों में नहीं रहूंगा, झोपड़ी में रहूंगा। और चौथी प्रतिज्ञा जब तक चित्तौड़ को मुक्त ना कर दूं तब तक दाढ़ी नहीं बनाऊंगा, बाल नहीं काटूंगा। ये प्रतिज्ञा थी, जब तक देश को, इस राज्य को, इस चित्तौड़ को मुगलों से मुक्त नहीं कर दूं तब तक। लड़ाई हुई थी हल्दीघाटी में, 22,000 इधर थे उधर 2,00,000 थे अकबर के सिपाही। वो देश के लिए प्रण था, हमारा भगवान के लिए प्रण है। पवित्रता की प्रतिज्ञा, चाहे कुछ भी हो जाए, झुकना पड़े, सड़कों पर आ जाना पड़े, लोग गालियां दे, देने दो, लौकिक संसार की लोक लाज तोड़ना पड़े तोड़ दो, पर पवित्रता के लिए सब कुछ सहन करना है। क्योंकि ये फर्स्ट श्रीमत है। ब्रह्मा को तो कितना समझाया लोगों ने, बाबा ये आपका जो संस्था है इससे ये ब्रह्मचर्य हटा दो बस, बाकी सब ठीक है। देखो कैसी भीड़ लगती है इधर, अभी लोग इतना विरोध करते हैं, क्या क्या करते हैं। हापुड़ की कहानी किस किस ने सुनी है? बहन जी को छोड़ के एक दो लोग, दो तीन ही है। हापुड़, हापुड़ में 1950s में भयंकर विरोध हुआ था ब्रह्मा कुमारियों का। ताले बंद कर दिए थे, लाइट बंद, लाइट सप्लाई, पानी सप्लाई बंद। एक भाई था उसको गधे पे बिठा के घुमाया था, सांप डाल दिया था गले में, जिंदा जिंदा सांप, बहुत सताया था लोगों ने, घर जलाए थे, क्या क्या किया था हापुड़ में। जैसे महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा थी, हमारी भी प्रतिज्ञा हो पवित्रता की। जब ऐसी पवित्रता की प्रतिज्ञा होगी, दृढ़ निश्चय होगा, सब झुक जाएंगे। वो पति भी झुक जाएगा और उसके परिवार वाले भी झुक जाएंगे और सारा समाज भी झुक जाएगा एक दिन। पर हम ही अगर ढीले हो गए, हमको ही अगर वो कहता है कि तुमने ये नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, इमोशनल ब्लैकमेल और हजारों चीजें, तो व्यक्ति खुद ही झुक जाता है। और हम झुक गए, माता यदि झुक गई तो समाज झुक जाएगा, फिर सब उसके साथ डूब जाएंगे। बाबा ने कहा है तुम माताओं के चरणों में एक दिन सन्यासी अपना सिर झुकाएंगे, पर किन माताओं के चरणों में? जो पवित्र है, सबके नहीं, जो प्योर है, संपूर्ण पवित्रता। उसके बाद मिल अगली बात, इच्छा मात्रम अविद्या। घर जाने के लिए क्या चाहिए? इच्छा मात्रम अविद्या। यहां की अब कोई इच्छा है शेष नहीं रही, अब एक ही इच्छा है बस घर जाने की, एक ही इच्छा है बाप को याद करने की, और कोई इच्छा ही नहीं है। ये करूं वो करूं, मुरलियों में आता है गर्भ में रहते हैं तो पश्चाताप करता है शिशु, गर्भ से निकालो बाहर बस फिर जैसा तुम कहोगे वैसा। बाहर आता है कहता है अब मुझे अभी खेलने कूदने के दिन है मेरे, बाद में करूंगा। और बड़ा होता है कहता है अभी तो मैंने कुछ पाया ही नहीं, थोड़ा सा जॉब नौकरी पैसे तो कमाऊं। भगवान कहते अब मुझे याद कर। वो कहता अभी तो मैं बड़ा हुआ, अभी तो नौकरी लगी, अभी तो शादी कहां हुई है, शादी तो कर लूं बाद में, तुमको याद करना ही करना है। शादी हो जाती कहते जब तक बेटे का मुंह नहीं देखता हूं, कैसे तुमको याद करूं कि अभी जिम्मेदारी है, पत्नी है, बच्चा होता है। कहता है बच्चे के स्कूल, उसको कौन स्कूल छोड़ेगा, बच्चा बड़ा होता है उसकी कॉलेज, उसकी एडमिशन, मेरा अपना जॉब। भगवान कहते अब तो मुझे याद कर, कहते बच्चे की शादी बिना किए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरा करने दो, शादी विधि हो जाए, घर उसका सवर जाए, फिर तो काम ही क्या है, बाबा को याद करना है बस बैठ के। शादी हो गई परंतु पोते का मुंह तो अभी देखा ही नहीं, और पोता क्या आ गया, माया ही बन के आ गई है। अब तक नष्टो मोहा स्थिति थी, अब तो बस वही चाहिए, उसको कुछ होता है तो इधर हलचल इधर गड़बड़। अब बाप को याद करो, अभी पोता स्कूल में तो जाए, स्कूल में भी चला गया, बड़ा भी हो गया, अब क्या है, अब उसकी शादी किसकी, पोते की। माया महा ठगनी हम जानी। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इसी में प्रपंच में ही प्राण चले जाएंगे एक दिन, ऐसा ही रह जाएगा सब कुछ धरा के धरा, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अभी से करना है जो कुछ करना है। कितनी बातें हो गई, 12 हो गई। पहला बताया अकाउंट्स क्लियर, कार्मिक अकाउंट को क्या करना है, क्लियर करने हैं सारे। दूसरा सारे संबंधों जो बंधन बन गए, तलवार निकाल के काट कर फेंक देने हैं। तलवार है ना सबके पास, तलवार निकाली लोहे के सारे काटे और फेंके, और ये चांदी और सोने वाला दिखा, काटने गए लगा इसको बाद में कितना अच्छा दिख रहा है। सारी बोतलें फेंक दी, तुम ना ना तुम निर्दोष हो, रहो अभी थोड़े देर। सारे बंधन कट गए, बेटे से वैराग आ गया, अरे ये तो पोता है, ये तो बड़ा प्यारा है, छोटा सा नाजुक सा, रोता है हंसता है तो कितना मनमोहक दिखता है, तू रख जा इसको, नहीं इसको बाद में देखेंगे लास्ट में, बाकी सब हो जाएगा ना उसके बाद। तीसरा वैराग्य, धधकता वैराग्य, हल्का फुल्का वैराग नहीं। तीन प्रकार के वैराग होते हैं, मंद वैराग, मध्यम वैराग या तीव्र वैराग। एक माता थी, उसका भाई रोज कहता था मुझे संसार से वैराग है, मुझे नहीं रहना, यह संसार बड़ा ही व्यर्थ है, मैं तो जा रहा हूं संन्यास लेने, रोज कहता था। एक दिन वो जो माता थी उसका पति जो रोज सुनता था वो कहता है वैराग ऐसा थोड़ी होता है, तो वो उसके साले साहब वो कहते फिर कैसा होता है, पति कहता है ऐसा, छोड़ के चला जाता है। कैसा होता है ऐसा, एक बार बोल दिया और गए, और वो क्या कर रहा है रोज कहता है आज जाता हूं कल जाता हूं देखता हूं कोशिश करता हूं, यह संसार मुझे पसंद नहीं है। ऐसे नहीं होता है, झाटकू। लास्ट संडे मुरली थी ना, तुरंदान महापुण्य, अब जो करना है अब करो, अब नहीं तो कब नहीं। जो धक से कटता है वो झाटकू सो महाप्रसाद, मुरली याद है ना लास्ट संडे की। ये जो बीच का टाइम है, अभी सोचा और किया, उसके बीच में माया आ जाती है, फिर सोचते रहते और सोचते सोचते त्रेता तक पहुंच जाओगे और सोचते सोचते अपना एक नया मठपन चालू कर दोगे और फिर सोचेंगे ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, हो क्यों गया, सोचने चालू कर देते, व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। चौथा, 1 सेकंड का अभ्यास अशरीरीपन। पांचवा, एवर रेडी। छठवा, एक बाप की याद और घर की याद। सातवा, उड़ान की 4 बातें। तो सातवा, आठवा, नौवा और 10वां। और 11वां, संपूर्ण पवित्रता। और 12वां, इच्छा मात्रम अविद्या। 9 कैसे हो गए, 12 तो हो गए। 4 अलग अलग है। सबसे पहला 4 में डबल लाइट स्थिति, अर्थात हल्कापन। किसने क्या कह दिया, उसने वैसा किया, इसने ऐसा किया, क्या याद रख रहे हैं, भूल जाओ, जिसने जो बोल दिया बोल दिया, जिसको जो कहना था कहनी है, फॉरगेट, हटाओ उसको, कब तक पकड़ के रहेंगे। दूसरा, डबल लाइट पेट्रोल, तो निराकारी और साकारी दोनों स्थितियों का अभ्यास। तीसरा, पंख, कौन से पंख लगा के उड़ना है, ज्ञान योग के। और कौन से पंख है, उमंग उत्साह के। और कौन से पंख है, पंख कौन कौन से है हमारे पास, उमंग उत्साह हो गया, ज्ञान योग हो गया, और भी कोई है, चलो इसके ऊपर सोचना, हमें कौन कौन से पंख मिले, चिंतन का टॉपिक है, ठीक है। हिम्मत के पंख, उल्लास के पंख, बहुत सारा मुरलियों में आता है। तो और फिर चौथा, स्विच, कौन सा स्मृति ऑन करना है, स्मृति का। जैसे यहां बैठे हैं, अचानक 10 साल पहले की घटना को याद करो, किसी ने बहुत दुख दिया और हम रोए थे, अभी याद करो तो अभी आंखों से आंसू आ जाएंगे। क्या कर दिया, ये स्मृति का स्विच ऑन कर दिया। बाबा की याद में रोटियां बना रही है माता, आ आ आ, अचानक बेटे की याद आ गई, क्या हो गया, स्मृति का स्विच इधर का ऑफ हो गया, इधर का ऑन हो गया। अब उसकी याद, अब तक बाबा की याद में आंसू बह रहे थे, अब बेटे की याद में बह रहे हैं। स्मृति और स्वरूप तुरंत हो जाता है, स्मृति आते ही क्या हो जाता है, स्वरूप। विकारों की स्मृति, तुरंत स्वरूप, उत्तेजना, एक्साइटमेंट, अनकंट्रोल्ड माइंड। बाप की याद, एकदम स्टेबिलिटी, शांत मन। लौकिक की याद, हलचल। अलौकिक की याद, स्थिर स्थिति। स्वर स्तुति, स्मृति और स्वरूप तुरंत होता है। तो ऐसी 10 बातें हैं जो हमें रिटर्न जर्नी के लिए क्या करती है, तैयार करती है। ओम शांति।
पर चले वीर तो ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी हो। शक्ति तुम्हारे जीव चले वीर तुम पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। मत देखो कितनी दूरी है, कितना लंबा मग है, और न सोचो साथ तुम्हारे आज कहां तक जग है। लक्ष्य प्राप्ति की बलि वेदी पर अपना तन मन वारो, हिम्मत कभी पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। बढ़ चलो मार्ग पर आगे सदा निहारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो,